एक मई दिन मंगलवार दिन भर मैं हूँ रेहान फदल। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से पूछा, क्या बोल सकते हैं 15 मिनट बिना कागज देखे हुए?
आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए।
बताएंगे कोलकाता में बहुत से लोगों ने क्यों छोड़ दिया है खाना गोश्त।
रिसेंटली आया कि वो मीट में कुछ खराबी है, तो इसलिए हम लोग अपना मेंबर्स को बोले हैं कि FSSAI सर्टिफाइड जो वेंडर्स है उनसे ही मीट वगैरह प्रोक्योर करने के लिए।
जिक्र होगा भारतीय हॉकी टीम में कोच के बदलाव का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को कर्नाटक सरकार की उपलब्धियों पर बिना कागज देखे 15 मिनट बोलने की चुनौती दी। बीते दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि अगर संसद में उन्हें 15 मिनट भाषण देने का मौका मिला तो मोदी वहां खड़े नहीं रह पाएंगे। कर्नाटक में नई विधानसभा के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि उसे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में पहले से ही जानकारी थी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने जब्त किए गए दस्तावेजों को दिखाते हुए कल कहा था कि इनसे साफ होता है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर गलत बयान दिया था। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली एजेंसी का कहना है कि ईरान की गतिविधि सीमित थी और 2009 के बाद इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। वहीं ईरान ने नेतन्याहू को झूठा बताया है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मूबी से मिली रिपोर्टों के मुताबिक वहां दो धमाके हुए हैं। ये साफ नहीं है कि धमाके में कितने लोग प्रभावित हुए। इनमें से एक धमाका एक मस्जिद में उस वक्त हुआ जब वहां नमाज की तैयारी हो रही थी। डोमिनिकन रिपब्लिकन ने ताइवान के साथ अपने लंबे कूटनीतिक रिश्तों को खत्म कर दिया है। इस देश ने अब चीन के साथ रिश्ते बना लिए हैं। इसके बाद अब सिर्फ 19 ऐसे देश हैं जो ताइवान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक के विदेश मंत्री मिगल वार्गास ने बीजिंग में इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा, डोमिनिकन रिपब्लिक का एक चीन के सिद्धांत में भरोसा है और वो इसे मान्यता देता है और वो ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर रहा है। ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है। अब ताइवान के साथ कोई आधिकारिक रिश्ता या संपर्क नहीं रहेगा। ये थे डोमिनिकन रिपब्लिक के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके देश में विद्रोही गतिविधियों से मुकाबले के लिए पर्याप्त सैनिक हैं। अफगानिस्तान का ये बयान अमरीकी सरकार की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि वहां सुरक्षा बलों की ताकत तेजी के साथ घटी है। रिपोर्ट में बताया गया था कि बड़ी संख्या में सैनिकों के हताहत होने और सुरक्षा बल छोड़ देने की वजह से बीते सालों में सैनिकों की संख्या में 10% की कमी आई है। अफगानिस्तान में कल हुए अलग अलग हमलों में 9 पत्रकारों समेत करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस के लियो शहर में वैज्ञानिकों ने गुलाब के जीनोम को डीकोड कर लिया है। उनके अध्ययन से गुलाब की नई प्रजातियां पैदा की जा सकती हैं। इस शोध को पूरा होने में 8 साल लगे। शोध में शामिल वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर मोहम्मद बेंडामने ने शोध के फायदे बताए। उन्होंने कहा, वास्तव में अब हम ये जान चुके हैं कि खुशबू पैदा करने वाले यौगिक पदार्थ कैसे बनते हैं और रंग कैसे बनते हैं। हमारे पास ये जानकारी भी है कि किस तरह से पौधों को ज़्यादा तंदुरुस्त बनाया जा सकता है, किस तरह से उन्हें ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर खुशबू देने वाला बनाया जा सकता है। ये थे वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आर्मेनिया में विपक्ष के नेता निकोल पाशियान ने संसद को बताया है कि वो प्रधानमंत्री चुने गए तो जल्दी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमले बोले हैं। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा है कि वो बगैर किसी कागज या रिपोर्ट को पढ़े कर्नाटक में अपनी सरकार की उपलब्धियों को 15 मिनट में गिनाएं। वो चाहें तो हिंदी, अंग्रेजी या अपनी माँ की मातृभाषा में बोल सकते हैं। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया को भी 2 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए आड़े हाथों लिया। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया स्थानीय मंदिरों के भगवानों को नमस्कार करते हुए। उसके फौरन बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस चुनौती पर आड़े हाथों लिया कि वो संसद छोड़कर निकल जाएंगे जब वो, यानी कि राहुल गांधी, 15 मिनट भी बात करें। मोदी राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा,
मोदी जी को छोड़ो नामदार, इस कामदार की क्या, ठीक है हम तो है कामदार है, लेकिन एक काम करो, आप इस चुनाव अभियान के दरमियान कर्नाटक में आपको जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माताजी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा, आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दी।
मोदी ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया एक राजनीतिक नवाचार कर दिया है जिससे वो खुद 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर अपने बेटे को तीसरे क्षेत्र में बलिदान करने वाले हैं।
मैं पिछले दिनों अखबार पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि कर्नाटक में 2+1 का फॉर्मूला चल रहा है। ये कुछ नहीं, कांग्रेस के फैमिली पॉलिटिक्स का कन्नड़ वर्जन है।
सिद्धरामैया ने इस पर सोशल मीडिया ट्विटर से सवाल पूछा कि मोदी ने क्यों नहीं बीजेपी के 2+1 के बारे बात नहीं किया। उनके अनुसार दो रेड्डी के भाई और येडियुरप्पा, जिन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं, उनके बारे में मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। सिद्धरामैया ने ये भी सवाल पूछा कि मोदी ने खुद वाराणसी और वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ा था। बहरहाल मोदी ने अपना आक्रात्मक भाषण चामराजनगर जिले के संत मारनहल्ली से उडुपी में भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नहीं छोड़ा। मोदी ने उस बात पर टिप्पणी की जिसमें राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की आलोचना की थी कि जनता दल सेक्युलर बीजेपी की बी टीम है।
मैंने सुना कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में आज से 15-20 दिन पहले जिस प्रकार से आदरणीय देवेगौड़ा जी का उल्लेख कर रहे थे, क्या ये आपके संस्कार है, क्या ये अहंकार? अरे अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अरे देवेगौड़ा जी तो इस देश के वरिष्ठ नेताओं में थे, आप उनको अपमानित करते हो।
प्रधानमंत्री के साथ संत मारनहल्ली के मंच पर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार BS येडियुरप्पा भी बैठे थे। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में येडियुरप्पा मोदी के मंच पर नहीं रहेंगे ताकि वो दूसरे इलाकों में पक्ष का प्रचार करें। बहरहाल अभी ये देखना होगा कि राहुल गांधी अपने गुरुवार को शुरू होने वाले अभियान में मोदी की चुनौती को किस तरह स्वीकार करेंगे। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सोमवार को बीजेपी PDP गठबंधन में बड़े पैमाने पर हेरफेर के बाद, जहां एक तरफ नए उप मुख्यमंत्री ने कठुआ में 8 साल की बच्ची की घटना पर बयान देकर विवाद खड़ा किया है, वहीं कठुआ के बीजेपी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर भी कड़ी आलोचना की जा रही है। कठुआ के विधायक पर आरोप है कि उन्होंने अभियुक्त के समर्थन में निकाली गई रैली में भाग लिया था। सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
बीते 3 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य में PDP BJP की गठबंधन सरकार में इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल होने के मिनटों बाद सबसे पहले राज्य के नए उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने यह कहकर विवाद खड़ा किया कि कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामूली मुद्दा है जिसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री के विवाद के बाद विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कठुआ के बीजेपी विधायक राजू जसोटिया को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर ट्विटर हैंडल पर लिखा, कठुआ के विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और बीजेपी कठुआ बलात्कार पर दुविधा का शिकार हैं। साथ ही विपक्ष एनसी ने अपने एक बयान में बताया कि कठुआ के बीजेपी विधायक राजू जसोटिया को मंत्रिमंडल में शामिल करना पहले से लगे जख्मों का अपमान है और कहा है कि मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। साथ ही विपक्ष ने राजू जसोटिया को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को शर्मनाक और दुखद बताया है। कश्मीर के व्यापार मंडल ने भी बताया है कि वो कठुआ के विधायक राजू जसोटिया के हर उस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे जहां उनको बुलाया जाएगा। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद यासीन खान ने बीबीसी को बताया,
उसमें ये एमएलए मुलवस था और उस रैली में ये शाना बशाना उनके साथ चल रहा था। जैसे भी चल रहा, हमने कहा कि अगर इस जैसे शख्स को, इस लॉ मेकर को कहीं इंसाफ की जगह पे खड़ा किया गया तो हमें नहीं लगता है कि हमें उसके सामने कभी जाना भी चाहिए, बल्कि हम जिस भी फोरम में उसको बुलाया जाएगा हम उसकी मुखालफत करेंगे और उसकी बात को नहीं मानेंगे किसी भी सूरत में।
बीजेपी की साझेदार पीडीपी ने राजू जसोटिया को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सफाई देते हुए बताया कि जसोटिया के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इस बात को साबित करता कि उनका कठुआ घटना के अभियुक्तों को बचाने में कोई रोल रहा है। पार्टी के प्रवक्ता रफी अहमद मीर ने बीबीसी को बताया,
अलबत्ता लोकल एमएलए के प्रोसेस होते हैं, वहाँ ये गया है, इलाके में घूमा है, किसके साथ गया था, कैसे गया था, लेकिन ही हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ द रैली और पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस इन व्हिच टू मिनिस्टर्स वर देयर। क्योंकि मिनिस्टर गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, एमएलए गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता है, तो दो मिनिस्टरों को वहां की हाजिरी के लिए तो उनको तो पनिशमेंट हुआ ही हुआ, लेकिन इसका ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि इन्होंने वहां पर कोई इस किस्म की हरकत की हो जिससे वो इन्वेस्टिगेशन पे फर्क आ जाए।
साथ ही मीर का ये भी कहना था कि बीजेपी के दो मंत्रियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की गई है जिन्होंने अभियुक्तों का समर्थन किया था। पीडीपी का ये भी कहना था कि जिन बीजेपी के दो मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया वो सरकार का हिस्सा थे और विधायक सरकार का हिस्सा नहीं होता है। तहां पीडीपी इस बात का जवाब नहीं दे सकी कि जिस विधायक को अब मंत्रिमंडल में लाया गया है वो तो अब सरकार का हिस्सा बन गए हैं। गौरतलब है कि कठुआ में 8 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद हिंदू एकता मंच नामी संगठन ने कठुआ अभियुक्तों के समर्थन में रैली निकाली थी, जिस रैली में राजू जसोटिया और बीजेपी के दो मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा भी शामिल हो गए थे। रैली के बाद दोनों ही मंत्रियों को मंत्री पद से जबरन इस्तीफा लिया गया। कठुआ घटना में अभी तक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। लाल सिंह, चंद्र प्रकाश और कठुआ के विधायक ने मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी, जबकि राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सीबीआई जांच से इनकार किया था। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में पत्थर काढ़कर अपने अधिकार की मांग करने वाले पत्थलगड़ी अभियान को लेकर राज्य के उत्तरी हिस्से में तनाव का वातावरण बना हुआ है। आदिवासी बहुल जशपुर जिले में इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले दो नेताओं को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद आज भी आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद से राज्य भर में आदिवासी संगठनों की बैठक का दौर जारी है। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी आदिवासी संगठनों का समर्थन किया है। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि संविधान के नाम पर आदिवासियों को भड़काया जा रहा है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
जयपुर के भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव रविवार को उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे जो पत्थलगड़ी को तोड़ने के लिए सड़कों पर उतरी थी। असल में देश के कई आदिवासी बहुल इलाकों को संविधान की 5वीं अनुसूची में रखा गया है, जहां ग्राम सभा के निर्णय को सर्वोपरि अधिकार दिए गए हैं। सप्ताह भर पहले झारखंड से लगे हुए छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की कुछ पंचायतों में आदिवासियों ने पत्थर गाड़कर घोषणा कर दी कि अब 5वीं अनुसूची वाले इन इलाकों में ग्राम सभा ही सारे नियम कानून तय करेगी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हेरमोन किंडो और आदिवासी नेता जोसेफ तिग्गा ने इसकी कमान संभाली। तिग्गा ने पत्थलगड़ी के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यही बात दोहराई।
संविधान की ओर से, सरकार की ओर से उसको पता है, चाहता था इस क्षेत्र में आ रहा है, कलेक्टर रहे या दूसरे रहे, उनको आने में हम रोक नहीं पाएंगे, रोकेंगे नहीं रोकेंगे। हाँ, कुछ बिजनेस करने आए, काम धाम करने आए, खनन खनन करने के लिए तोड़ मोड़ करने आए, उसमें तो हम जरूर रोकेंगे।
लेकिन आदिवासियों द्वारा पत्थलगड़ी आंदोलन की शुरुआत करने को लेकर भाजपा ने आरोप लगाया कि यह धर्मांतरण करने वालों की साजिश है। यह वही इलाका है जहां से भाजपा नेता दिलीप सिंह जुदेव कथित रूप से धर्मांतरण कराने वालों की घर वापसी कराते थे। पत्थलगड़ी से नाराज केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय और सांसद रणविजय सिंह जुदेव के नेतृत्व में रविवार को एक यात्रा निकली जिसने कई गांवों में आदिवासियों द्वारा लगाए गए पत्थरों को तोड़ दिया। विवाद बढ़ा तो आदिवासियों ने सरकारी अधिकारियों को घंटों बंधक बनाकर रखा। अधिकारियों ने कार्रवाई का हवाला दिया और फिर आदिवासियों से बचकर निकले। लेकिन सोमवार को पत्थलगड़ी शुरू करने वाले दो नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राज्य के गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा का कहना है कि सरकार किसी भी हालत में पत्थलगड़ी अभियान नहीं चलने देगी।
देखिए, निश्चित है इसमें कहीं ना कहीं साजिश है और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई मिशन ऐसा चल रहा है, इसमें धर्मांतरण का भी विषय आता है और ये पत्थलगड़ी असंवैधानिक है जो मूल आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। निश्चित है कि उसको सफलता हासिल नहीं होने देंगे।
लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के आदिवासी मामलों के अध्यक्ष अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा के ही एक आदिवासी नेता और SC/ST कमीशन के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने ही कभी पत्थलगड़ी अभियान की शुरुआत की थी।
नंद कुमार साय ने इसका उद्घाटन किया है और बीजेपी ने इसका भी विरोध कर रहा है। भाजपा तो क्या कर रही है उसका कहनी कथनी आपके सामने है। उन्हीं के लोग उद्घाटन करते हैं, उन्हीं के लोग विरोध करते हैं। आदिवासियों के साथ तो कांग्रेस शुरू से रही है और हमेशा रहेगी।
फिलहाल पत्थलगड़ी की शुरुआत करने वाले आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आज सर्व आदिवासी समाज समेत दूसरे कई संगठनों ने राज्य भर के आदिवासियों की बैठक बुलाई है। मतलब साफ है कि अभी छत्तीसगढ़ में पत्थलगड़ी का विवाद लंबा चल सकता है। आलोक तुल, BBC छत्तीसगढ़।
BBC हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इन दिनों मीट को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। पुलिस ने जब से अवैध और मरे हुए जानवरों के मांस को बाजार में बेचने वालों का भंडाफोड़ किया है, शहर में शाकाहार की लहर दौड़ गई है। सुनिए BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
कोलकाता शहर में इन दिनों चर्चा पंचायत चुनाव या ममता बनर्जी पर नहीं हो रही है। मुद्दा सिर्फ यही है कि अगर आप मीट खा रहे हैं तो कौन सा। जी हाँ, जिस शहर में 80% लोग मांसाहारी हैं, वहाँ पिछले एक हफ्ते में मीट खाने वालों में 50% गिरावट आ चुकी है। वजह है एक मरे हुए जानवरों के मांस के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ होना। इसके बाद गर्म हुआ अफवाहों का बाजार कि उन पशुओं में शायद कुत्ते बिल्ली का मीट भी हो सकता है। BBC के कोलकाता संवाददाता अमिताभ भट्टासाली ने बताया कि स्थानीय पुलिस को मीट के अवैध रैकेट के बारे में बेहद दिलचस्प अंदाज में ही पता चला।
कोलकाता से सटे हुए इलाका बजबज के एक डंपिंग ग्राउंड जो है, वहाँ से एक टैक्सी निकली थी और पिछले जो टायर है वो कीचड़ में फंस गया था और इसकी पूरी वजन को कम करने के लिए ये बूट से एक के बाद एक पैकेट निकाला जा रहा था। तो आसपास के लोगों को ये एक शॉक हुआ कि ये गाड़ी आई कहाँ से और ये पैकेट किस चीज की है। उन लोगों को पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि वो डंपियर से ही गाड़ी लाया जा रहा था और बूट से जो पैकेट निकाला जा रहा था वो कैराकस मीट है।
खबर आग की तरह फैल गई, पुलिस हरकत में आई और शहर के बीचों बीच स्थित राजा बाजार इलाके की एक कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रेड में मरे हुए जानवरों का 20 टन मांस बरामद हुआ। कोलकाता पुलिस ने BBC को बताया है कि ये गिरोह मरे हुए जानवरों के मांस को साफ करके, केमिकल से धो करके, फ्रिज में रख करके उसके बाद फ्रेश चिकन और मटन जैसी चीजों में मिला दिया जाता था। बाद में इसे सस्ते दामों में बाजार में बेच भी दिया जाता था। इस मामले में कुल 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। लोगों में मीट के लिए एकाएक विरक्ति पैदा होना भी बहुत लाजमी था। वैसे भी कोलकाता अपने नॉनवेज स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर रहा है। एग रोल, मोमोज, मुगलई रोल से लेकर बिरयानी तक इस शहर में सस्ते दामों में मिलती है। लेकिन इस खबर और उसके बाद पैदा हुई अफवाहों से लोगों में डर भी बैठ गया है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया की चिंता भी लाजमी है। उन्होंने अपनी तरफ से सभी बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स को सलाह भी जारी कर दी है। एसोसिएशन के उप महासचिव अतिक राम गुप्ता ने BBC को बताया,
रिसेंटली आया कि वो मीट में कुछ खराबी है, कुछ मरा हुआ सीकेनिक का मीट मिला के भेज रहा है, तो इसलिए हम लोग अपना मेंबर्स को बोले हैं कि FSSAI सर्टिफाइड जो वेंडर्स है उनसे ही मीट वगैरह प्रोक्योर करने के लिए, और इनका पास प्रॉपर ट्रेड लाइसेंस हो, FSSAI लाइसेंस हो और ISO 9000 सर्टिफिकेशन हो, ये लोग से लेने के लिए बोला गया।
स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में लोग मांसाहारी के नाम पर मछली और सी फूड ही खाना पसंद कर रहे हैं। बालीगंज सर्कुलर रोड पर रहने वाली नीना रॉय ने मुझसे कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोलकाता के मीट में मिलावट हो सकती है। प्रशासन पूरी जांच का वादा कर रहा है और इस बात को पता लगाने की मुहिम में है कि आखिर मरे हुए पशुओं में से किन किन पशुओं का मांस अवैध तरीके से बाजार में आता था। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगे होने पर विवाद छिड़ गया है। हालांकि तस्वीर काफी पहले से लगी है, लेकिन अलीगढ़ से BJP सांसद ने वाइस चांसलर को पत्र लिखकर इसका कारण जानना चाहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये छात्र संघ का मामला है, इससे विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
अलीगढ़ से BJP सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगे होने पर आपत्ति जताई है और इस बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। उन्हें आपत्ति इस बात पर है कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तस्वीर वहां कैसे लगी। सतीश गौतम कहते हैं,
यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे वो आजीवन सदस्य हो, बंटवारा होने के बाद जिन्ना की तस्वीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप की तस्वीर लगानी चाहिए, सर सैयद जी की, जो दोनों का इसमें योगदान रहा है, और पूरा ये समाज को लेकर चाहे राजा महेंद्र प्रताप हो, सर सैयद हो, दोनों ने AMU की स्थापना की और उसी वजह से आज अलीगढ़ का नाम रोशन हो रहा है।
दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर AMU के छात्र संघ भवन में काफी पहले से लगी है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में ऐसे तमाम लोगों की तस्वीरें लगी हैं जिन्हें छात्र संघ ने मानद सदस्यता दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्र संघ विश्वविद्यालय का ही एक निर्वाचित अंग है, इसलिए ये उसका अपना फैसला है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग के प्रमुख शाफिक किदवई कहते हैं,
पहली बात तो ये समझने की है कि अगर स्टूडेंट यूनियन है या स्टाफ एसोसिएशन है या इस तरह के जो यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़ हैं अलीगढ़ में, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं उसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं होता है और वो अपने तौर पर एक डिसीज़न लेते हैं। जो स्टूडेंट यूनियन जो है 1920 से जब से बनी है तब से वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ क्षेत्रों में जिन लोगों ने बहुत अहम काम किए हैं उसको यूनियन ने अपनी ऑनरेरी मेंबरशिप दी है। जिन जिन लोगों को मेंबरशिप दी है उनका रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है, उनकी उसमें से कुछ लोगों की उन्होंने फ़ोटो उन्होंने यूनियन भवन वहाँ पे इन लोगों की है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से इसका कोई डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
AMU के छात्र संघ पदाधिकारियों का कहना है कि जिन्ना की ये तस्वीर आज से नहीं बल्कि आज़ादी से एक दशक पहले से लगी है। छात्र संघ से जुड़े लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया है कि इसे लेकर BJP सांसद अब क्यों पत्र लिख रहे हैं। AMU के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन कहते हैं कि कोई सरकारी आदेश आएगा तो तस्वीर हट भी सकती है।
हाल में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी रहा हूँ, मैंने देखा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज़ादी से पहले से लगी है या आज़ादी के बाद से लगी है हिंदुस्तान की आज़ादी, क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1938 में आए और तब उस वक्त की मौजूदा यूनियन ने उनको लाइफ मेंबरशिप दिया। उससे पहले से जब से गांधी जी को दिया गया, नेहरू जी को दिया गया और सऊदी अरब के किंग को दिया गया, ईरान से बुलाए गए उनको दिया गया, अगर कोई रेजोल्यूशन ऐसा आता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो बिल्कुल उस पर हम लोग सोच विचार करेंगे, कोई ऐसी जिद नहीं है कि लगा ही रहेगा।
बहरहाल सांसद महोदय ने पत्र में जो तमाम सवाल उठाए हैं उनके आधिकारिक उत्तर उन्हें अभी नहीं मिले हैं, लेकिन छात्र संघ पदाधिकारियों का कहना है कि यदि पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन की बजाय उन्हें लिखा गया होता तो बेहतर और तत्काल जवाब मिलता। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब खेल जगत से कुछ खबरें। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच में जल्दी जल्दी बदलाव का दौर जारी है। एक हैरानी भरे फैसले में हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह को आज भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया। जबकि पुरुष टीम के कोच शॉर्ट मरीन को राष्ट्रमंडल खेलों में खराब प्रदर्शन के बाद फिर महिला टीम की बागडोर सौंपी गई है। राखी शर्मा की रिपोर्ट।
भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीमों के कोच बदले जाने का सिलसिला जारी है। हॉकी इंडिया ने आज एक बार फिर हैरानी भरा फैसला लेते हुए महिला हॉकी टीम की कोच हरेंद्र सिंह को पुरुष टीम का कोच नियुक्त कर दिया, जबकि पुरुष टीम के कोच शोर्ड मारिन को राष्ट्रमंडल खेलों में खराब प्रदर्शन करने के बाद फिर से महिला टीम की बागडोर सौंप दी गई। हरेंद्र 2009 से 2011 तक पहले भी भारतीय पुरुष टीम के कोच रह चुके हैं। वो पिछले साल नवंबर से भारतीय महिला टीम के कोच थे, जब मारिन को रोलेंट ऑल्टमेंस की जगह पुरुष टीम का कोच बनाया गया था। भारत को 1964 ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान गुरबख्श सिंह हॉकी इंडिया के इस फैसले के बारे में कहते हैं,
मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए तो टाइम लगेगा डिसीजन को रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि सब चीज सिर पर है। अभी कॉमनवेल्थ ट्रॉफी क्या है, उससे पहले अजम शाह था, उससे पहले वुमेन से जो है मैनेजमेंट लेके आए मर्जिन को, हरिंदर वॉज जूनियर कोच फॉर द बॉयज, देन ही बिकेम ए वुमेन्स कोच। इट्स दिस शफलिंग आई थिंक डजंट पे इन द लॉन्ग रन। कंटिन्यूटी कोई भी हो, ही शुड बी गिवन ए कंटिन्यूटी। टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट जो है चेंज करना कि हम कहीं पर अच्छा परफॉर्म नहीं किए और उसके लिए कोच को दोषी करार देना, मेरे ख्याल में इट्स वेरी वेरी अनफेयर।
हरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम 2016 में विश्व कप जीत चुकी है और महिला टीम हाल ही में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेलों में चौथे स्थान पर रही। इसके अलावा महिला टीम ने पिछले साल जापान में 9वां महिला एशिया कप खिताब भी जीता, जबकि मारिन की कोचिंग में पुरुष टीम राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर रही और मेडल से चूकी। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय पुरुष टीम बिना किसी पदक के लौटी। 1975 विश्व कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले पूर्व हॉकी कप्तान अशोक ध्यानचंद का कहना है कि हॉकी इंडिया कोच की भरपाई कर पाने में नाकाम रही है।
मेरा ये कहना है कोचिस के बारे में, इतने साल हो गए हमको, हमने अपने यहाँ अंपायर्स के पूल बना दिए, उनको ट्रेनिंग देकर उनको अलग अलग कर दिया, हमने खिलाड़ियों का हमारे पूल बन गए हैं, लेकिन आज तक हमने अपने कोचिस के पूल नहीं बनाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कमी दिखाती है और दर्शाती है कि हमारा एंटिसिपेटरी चीजें जो कोचिंग के लिए होनी चाहिए वो हमारी अभी पुख्ता नहीं हुई है, सॉलिड नहीं हुई है। हमको बाहर से कोच बुलाने पड़ते हैं, उनको रखना पड़ता है, उनको निकालना भी पड़ता है, दोनों चीजें खराब है।
इसी साल भारतीय महिला और पुरुष टीमों को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व कप में हिस्सा लेना है, ऐसे में कोच के फेरबदल से टीम पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में गुरबख्श सिंह कहते हैं,
मेरे हिसाब से टीम बहुत प्रेशर में रहेगी, क्योंकि एशियन गेम्स हमारे हॉकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन गेम्स में अगर हम चैंपियन हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम क्वालिफाई कर जाते हैं ओलंपिक के लिए और 2020 के लिए, तो 2 साल का टाइम हमको मिलता है प्रेपरेशन फॉर आपको जापान का 2020 के लिए।
भारतीय महिला टीम मई में चैंपियंस ट्रॉफी कोरिया में खेलेगी, जबकि पुरुषों का यही मुकाबला जून में नीदरलैंड्स में होगा।
हमारे साथी वात्सल्य राय इस समय मेरे सामने स्टूडियो में बैठे हुए हैं और पूरी नजर रखे हुए हैं आईपीएल मैचों पे। वात्सल्य, आज टूर्नामेंट में कौन सा मैच खेला जा रहा है?
जी, मुकाबला उन दो टीमों के बीच में है जिनका इंतजार आईपीएल के दर्शकों को रहता है, यानी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। भारतीय टीम के अगर बात किया जाए, दो बड़े खिलाड़ी, एक तरफ विराट कोहली, एक तरफ रोहित शर्मा, दोनों के बीच में टक्कर देखने के लिए दर्शक बेताब रहते हैं, लेकिन दोनों टीमों के प्रदर्शन की इस टूर्नामेंट में बात की जाए तो बड़ा खराब रहा है। दोनों टीमों ने अभी तक 7 में से सिर्फ 5 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं, माफ़ कीजिएगा, और 2 में ही उनको जीत मिली है। अब बाकी के बचे हुए जो 7 मैच हैं उनमें से कम 6 मैच जीतने होंगे अगर प्लेऑफ तक जाना है। टॉस की बात करें तो मुंबई ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य। और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। सीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले एक गांव में हुए हवाई हमले में 23 आम नागरिकों की मौत हो गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। आर्मेनिया में विपक्ष के नेता निकोल पाशिनयान ने कहा है कि अगर सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकने की कोशिश की तो देश में राजनीतिक सुनामी आ जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि उसे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में पहले से ही जानकारी थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया, रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।